हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ऋषभ कार स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा था, किंतु कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। समर को आसपास का माहौल बिल्कुल अनजान सा लग रहा था। उसे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। अगर कार स्टार्ट नहीं हुई तो उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलने वाला था। वो घर कैसे जाएगा, ये सोचकर वो परेशान हो गया था। समर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या कर रहे हो ऋषभ, जल्दी कार स्टार्ट करो। उसे घबराता देख ऋषभ ने कहा, रिलैक्स, वही कर रहा हूँ। देखो ना, पर पता नहीं क्या हो गया है, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। समर ने पूछा, पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया ना, अभी तुम बोल रहे थे। ऋषभ ने उत्तर दिया, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, अभी पूरा खत्म तो नहीं हुआ है, इंजन में कोई प्रॉब्लम है शायद, देखना पड़ेगा। समर ने थोड़ा मुंह बनाते हुए पूछा, इंजन में प्रॉब्लम है, इतनी महंगी गाड़ियां भी खराब होती हैं क्या, ऐसे बीच रास्ते में, फिर क्या फायदा इतने पैसे खर्च करने का। ये सुनकर ऋषभ हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, मजाक अच्छा कर लेते हो समर, गाड़ी महंगी हो या सस्ती, लेकिन कभी किसी चीज की गारंटी थोड़ी ना होती है, कभी ना कभी तो खराब हो ही सकती है बाय चांस। इतना बोलकर दोनों मुस्कुराते हुए हल्के से अपना सिर हिलाए और अपनी अपनी तरफ कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगे। समर ने ऋषभ का हाथ पकड़कर रोका, अरे लेकिन तुम बाहर कहाँ जा रहे हो, देखो कितना सुनसान एरिया है और आसपास कुछ नजर भी नहीं आ रहा। उसे परेशान देख ऋषभ ने समझाया, अरे बाहर टहलने नहीं जा रहा, बस कार चेक करने जा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है, और वैसे भी इस तरह कार में बैठे रहने से तो कुछ नहीं होने वाला ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आंखों में उम्मीद की चमक के साथ समर ने पूछा, वाह तुम्हें कार रिपेयर करनी भी आती है क्या। ऋषभ ने फिर समझाते हुए कहा, ओफ कम ऑन, मैं कोई मैकेनिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन बेसिक तो आते ही हैं, अगर कोई नॉर्मल सी माइनर प्रॉब्लम हुई तो शायद ठीक कर सकता हूँ, बाकी पता नहीं, पर पहले चेक तो कर लूँ, तुम यहीं पर रुको। ये सुनकर समर ने सिर हिलाया और ऋषभ का हाथ छोड़ दिया, पर वो कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही ऋषभ कार से बाहर निकल गया और कार का बोनट खोलकर खड़ा हो गया। कार से कोई धुआं नहीं निकल रहा था, न ही इंजन गरम नजर आ रहा था, पर वहां काफी अंधेरा था, इस वजह से कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो वो उसे नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक लाइट बोनट के खुले हुए हिस्से पर पड़ी तो ऋषभ ने चौंक कर उस तरफ देखा। उसके बगल में ही समर अपने हाथ में मोबाइल पकड़े खड़ा था। उसके मोबाइल की फ्लैश लाइट की रोशनी ही उसे वहां नजर आई थी। उसकी तरफ देखकर थोड़ा चिढ़ते हुए ऋषभ ने कहा, बाहर क्यों आए तुम। समर ने बहुत आराम से कहा, आई थॉट यू नीड सम हेल्प, वैसे भी अंधेरे में कुछ नजर तो नहीं आ रहा होगा, कार ठीक कैसे करोगे। इस पर ऋषभ ने कुछ नहीं बोला, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अब मोबाइल की फ्लैशलाइट में उसे कुछ दिखने लगा था। उसने एक आध तारों को छू कर देखा और फिर कन्फ्यूजन से अपना सिर खुजाने लगा। उसे कन्फ्यूज देख कर समर ने पूछा, नहीं समझ आ रहा ना, अब क्या करेंगे हम, पैदल घर जाएंगे क्या, मुझे तो ये रास्ता भी नहीं पता है, पता नहीं किस रास्ते से लेकर आए हो तुम। ऋषभ ने थोड़ा रौब जमाते हुए पूछा, यही एक रास्ता है, और तुम गए ही क्यों उस क्लब में अपने दोस्तों के साथ, कितना दूर है वो तुम्हारे घर से। ऋषभ के ऐसे सवाल पर समर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अरे ये क्या अजीब दादागिरी है, ये कैसा सवाल है कि क्यों गए थे, तुम भी तो वहां पर ही थे ना, मैं तो तुमसे नहीं पूछ रहा कि तुम क्यों गए थे वहां पर, और नाइट क्लब क्यों जाता है कोई, इतना तो पता ही होगा तुम्हें। ऋषभ समर के दोस्तों की हरकतें याद करके थोड़े गुस्से में बोला, हाँ पता है मुझे, लेकिन वो जगह तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और तुम्हारे वो दोस्त सारे के सारे बिगड़े हुए लग रहे थे। ये बात सुनकर समर का मुंह बन गया। उसने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, सबसे पहली बात मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं, इसलिए मुझे बार बार बच्चा बोलना बंद करो, और ऐसा भी कौन सा काम कर दिया मेरे दोस्तों ने जो ऐसा बोल रहे हो तुम उनके बारे में, और बिगड़ना सुधरना क्या होता है तुम्हारे हिसाब से। समर की बात पर ऋषभ ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, पर वो और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उन लोगों को सामने से आती हुई तेज हेडलाइट की रोशनी अपनी आंखों पर पड़ी। उन्हें लगा शायद कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक के बाद एक तीन चार बाइक जिन पर लगभग तीन तीन गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के बैठे हुए थे, वे उनकी कार समेत उन दोनों के गोल गोल चक्कर काटने लगे। उन दोनों को समझ आ गया कि वे किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। समर का गला सूख गया और माथे पर पसीना आ गया। वो पहले कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं पड़ा था, वो भी ऐसे अनजान रास्ते पर जहाँ से उसे ये भी नहीं पता था कि अगर वो उन लोगों से भागेगा तो कहाँ पहुँचेगा। अपने आस पास सिर घुमाते हुए ऋषभ ने चिल्ला कर पूछा, हे क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? ज्यादातर लोगों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था या फिर रुमाल से चेहरा ढांक रखा था। वे देखने में ही चोर लुटेरे लग रहे थे जो ऐसे सुनसान रास्तों पर राहगीरों को लूटते होंगे। उनमें से एक बाइक समर के एकदम सामने रुकी। उसमें सबसे आगे बैठे आदमी ने अपनी जेब से चाकू निकालते हुए कहा, हमारी प्रॉब्लम ये है कि जल्दी से सारा माल खाली करो जो कुछ भी तुम दोनों के पास है, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाकी सारे लोगों के पास भी हथियार थे, एक के पास तो गन भी थी। वो गन देखकर समर का गला सूख गया। डर से उसके हाथ ऋषभ के बाजू पर कस गए। उसने कसकर उसकी आस्तीन अपने हाथों में पकड़ ली। समर ने ऋषभ के कान के पास अपना चेहरा ले जाते हुए धीमी आवाज में कहा, क्या करेंगे अब हम ऋषभ, कैसे निकलेंगे यहाँ से? समर को घबराता देख ऋषभ ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और पलकें झपकाकर उसे शांत रहने का इशारा किया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि बाइक में बैठे एक आदमी ने तेज आवाज में गुर्राते हुए कहा, क्या खुसर फुसर चल रही है तुम दोनों के बीच? कोई चालाकी नहीं करने का, नहीं तो तुम दोनों में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। उस आदमी की तेज आवाज सुनकर समर लगभग रोते हुए बोला, नहीं नहीं, हम कोई चालाकी नहीं कर रहे हैं और मेरे पास तो कोई ज्यादा पैसे भी नहीं है, मुझे मत मारना प्लीज। दो तीन आदमी बाइक से उतर आए और अपने हाथ में पकड़ी हुई चाकू लेकर ऋषभ की तरफ बढ़ते हुए उनमें से एक ने कहा, तेरे पास नहीं लेकिन तेरे दोस्त के पास तो है, ये मालदार पार्टी लगता है, चल निकाल जितना भी है जेब में और अगर कार में है तो वो भी। ऋषभ अपने आस पास घूमते हुए उन लोगों को समझाने की कोशिश करता हुआ बोला, रुको मेरी बात सुनो, तुम लोग जो भी कर रहे हो ये सब इल्लीगल है और इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है, इसलिए ये सब मत करो, तुम बच सकते हो। तभी उनमें से एक ने दोबारा चाकू दिखाते हुए ऋषभ को धमकाया, ए चुप, बिल्कुल चुप, मुंह बंद कर और अपना ये ज्ञान कहीं और देना जाकर, अभी सीधा माल निकाल नहीं तो अभी ही तुम दोनों की लाशें बिछा देंगे। ये सुनकर समर को लगा कि ऋषभ बेवकूफी कर रहा है, उसने ऋषभ का हाथ कस कर दबाया। ऋषभ ने उसकी तरफ देखा। समर ने धीमी आवाज में कहा, क्या कर रहे हो, ये लोग कोई अच्छे इंसान नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे, चुपचाप से दे दो ना पैसा, इतना इम्पोर्टेंट है क्या तुम्हारे लिए? ऋषभ ने भी हल्का सा झुकते हुए समर से कहा, अरे लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है जितनी ये लोग समझ रहे हैं, और वैसे भी हमें कुछ तो सोचना ही चाहिए ना खुद को बचाने के लिए।
उन लोगों को आपस में बात करते देख लुटेरों ने कहा, नहीं ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, लगता है इनके साथ जोर जबरदस्ती ही अपनानी पड़ेगी, चलो हमला करो। इतना बोलते ही तीन तीन लोग आगे आए। दो लोगों ने ऋषभ और समर को एक दूसरे से दूर करके पीछे कर दिया और उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। एक आदमी ने कॉलर पकड़ते हुए ऋषभ को एकदम सामने किया और कहा, लगता है जिंदगी से ज्यादा तुझे पैसे प्यारे हैं, लेकिन शायद तेरे पास दोनों ही नहीं रह जाएंगे। जैसे ही उन लोगों ने समर को पकड़ा, समर लगभग चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मुझे छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैंने कहा था ना जितने भी हैं मैं सब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे प्लीज छोड़ दो। ऋषभ ने अपना पूरा जोर लगाकर उन लोगों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, जस्ट लीव अस यू बास्टर्ड्स, और बहुत पछताओगे तुम सब, छोड़ो मुझे। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उन तीन लोगों की ताकत ऋषभ से कहीं ज्यादा थी। अब वे ऋषभ और समर की सारी पॉकेट्स चेक करने लगे और उन्हें जहां पर जो भी पैसा मिला वो सब कुछ निकालने लगे। तभी एक आदमी की नज़र ऋषभ के हाथ में पहने ब्रेसलेट पर पड़ी। वो देखने में ही काफी महंगा लग रहा था। वो ब्रेसलेट देखकर उस आदमी की आंखें चमक गईं। वो ब्रेसलेट उतारने लगा लेकिन ऋषभ ने पूरा जोर लगाया और उसे ब्रेसलेट का लॉक खोलने नहीं दिया। इस पर उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में चाकू निकालकर ऋषभ पर वार किया, लेकिन ऋषभ साइड हो गया और वो वार उसके बाजू पर लगा। ऋषभ के जिद्दीपन को देखकर वे सब गुस्से में आ गए थे। ऋषभ के सारे पैसे और सामान लूट लेने के बाद भी वे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी दूर से एक बुलेट आकर उस आदमी के हाथ पर लगी जो ऋषभ पर अटैक करने वाला था। उसके हाथ में पकड़ी हुई चाकू जमीन पर गिर गई। पीछे से गोली चलने की आवाज सुनकर वे सब घबरा गए। जिस आदमी के हाथ में गोली लगी थी उसके हाथ से खून निकलने लगा। वे शायद समझ गए थे कि कौन है, इसलिए वे बिना रुके अपनी बाइक में बैठकर भाग गए, लेकिन तभी पीछे से कुछ और गोलियों के चलने की आवाज आई। क्रमशः